بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امریکہ کا اقتصادی بحران اور حکومتی قرضوں کی سطح میں اضافہ۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن کا بحران ختم ہو گیا اور فی الحال حکومت کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن اقتصادی بحران اور معیشتی مسائل جاری ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری قرضوں کی سطح بڑھ کے 17 ٹریلین 70 ملین ڈالر ہو گئی ہے، جس کو امریکہ کی حزب اختلاف ریپبلکن رہنماؤں نے ناقابل قبول بتایا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما جب امریکہ کے ایوان اقتدار وائٹ ہاؤس میں پہنچے تھے تو نیوکون کی چھیڑی ہوئی نام نہاد دہشت گردی مخالف جنگ اور اقتصادی مشکلات انہیں وراثت میں ملی تھیں، لیکن اس وقت سرکاری قرضوں کی سطح 10 ٹریلین 627 ملین ڈالر تھی، جو اب بڑھ کے 17 ٹریلین سے زائد ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ریپبلکن رہنماؤں نے صاف اور واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ اگرچہ حکومتی قرضوں کی سطح اور امریکہ کی ہیلتھ انشورنس پالیسی اوباما کیئر کے خلاف حالیہ لڑائی میں انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے، لیکن وہ جنگ سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں اور 3 مہینے کے بعد وہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ حکومت کی پالیسیوں، خاص طور پر اوباما کیئر کے خلاف مہم شروع کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم صدر اوباما کی حکومت اور حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی کی حالیہ جنگ کے نتائج کے ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ ریپبلکن نے اپنی شکست تسلیم کرنے کے باوجود جنگ جاری رکھنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ان کے کون سے اہداف ہیں، حکومت اور حزب اختلاف کی لڑائی کے نتیجے میں عوام کو کیا مل رہا ہے، حکومتی قرضوں کی سطح میں مسلسل اضافے کے اسباب کیا ہیں، اور امریکی حکومت اور انتظامیہ قرضوں کی سطح بڑھا کے اپنی سپر پاور کی امیج کب تک باقی رکھ سکتی ہے۔ تو پہلے اس سلسلے میں ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
امریکہ میں 1 اکتوبر کو نئے مالی سال کے آغاز سے ہی ایک نیا بحران کھڑا ہو گیا، جو کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے مابین رسہ کشی پر منتج ہوا۔ 2 ہفتے کی زور آزمائی کے بعد کانگریس نے اوباما انتظامیہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اس بل کو منظوری دی، جس سے حکومتی شٹ ڈاؤن ختم ہوا اور حکومتی قرضے کی سطح بھی بڑھا دی گئی۔ اس طرح یہ بحران 3 مہینے کے لیے ٹل گیا ہے، یعنی بحران ختم نہیں ہوا۔ یہ لڑائی در حقیقت ٹی پارٹی تحریک اور اوباما انتظامیہ کے مابین تھی۔ ٹی پارٹی تحریک قدامت پسندوں کی تحریک ہے، جس کا ہدف اوباما انتظامیہ کو زخم پہنچانا ہے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بوہنر اس تحریک کا حصہ ہیں۔ ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ وہ کسی طرح صدر اوباما کی طرف سے متعارف کرائی جانے والی افورڈیبل کیئر ایکٹ یا اوباما کیئر کو روک سکیں، یا ایسی شرائط عائد کرنے میں کامیاب ہو جائیں جن سے یہ بل عملاً ناکارہ ہو جائے۔ ٹی پارٹی کی تحریک کے زیر اثر اسپیکر جان بوہنر نے اوباما انتظامیہ سے جو جھگڑا شروع کیا، وہ امریکی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن پر منتج ہوا۔ اس جھگڑے میں ان کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایک بھی قابل ذکر رعایت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ریپبلکن پارٹی کی نائب صدارت کی سابق امیدوار اور ٹی پارٹی تحریک کی سرگرم رکن سارا پیلن نے شٹ ڈاؤن جھگڑے میں ریپبلکن کی شکست کے بعد اپنے فیس بک صفحے پر لکھا ہے کہ ہمت پکڑو، ہم 2014 میں چیزوں کو ہلا کر رکھ دیں گے، ہمیں جلد ہی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں دراڑیں ڈالنی ہیں۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بوہنر نے اوباما ہیلتھ کیئر پر کوئی رعایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ ہم نے ایک اچھی لڑائی لڑی ہے، بس ہم جیت نہیں سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ٹیم نے ہار نہیں مانی ہے اور میں نے بھی ہار نہیں مانی ہے۔ شٹ ڈاؤن اور قرضے کی سطح بڑھانے کے اس پورے معاملے نے اس سے قطع نظر کہ اس میں کس کی فتح ہوئی اور کسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ امریکہ شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس سے خود امریکی عوام بھی بخوبی آگاہ ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک بھی حقیقت حال سے واقف ہیں۔ آج امریکہ سمیت ساری دنیا میں یہ تاثر ہے کہ چین معاشی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر نے کچھ عرصہ قبل ایک سروے کروایا جس میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ عالمی کساد بازاری نے امریکی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے، جبکہ چین نے اس دوران انتہائی تیز رفتار ترقی کی ہے۔ جائزے کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ مستقبل میں چین ایک بڑی معیشت کے طور پر دنیا کی قیادت کرے گا۔ 44% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ چین نمبر ایک عالمی طاقت ہے۔ میڈیا رپورٹیں بتاتی ہیں کہ سن 2008 میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اب ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ بہت بنیادی قسم کی مشکلات کا شکار ہے اور ان مشکلات کو عارضی طریقوں اور بیل آؤٹ پیکج جیسے اقدامات سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کی رائے ہے کہ گزشتہ 100 سال کے دوران اہم تکنیکی ایجادات امریکہ میں ہوئیں۔ اسمبلی لائن پر کاروں کا پروڈکشن، ایٹمی انرجی، پرسنل کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ ساری ایجادات امریکہ کے نام ہیں۔ امریکہ نے ان ایجادات کو دوسرے ملکوں کے ہاتھوں بہت مہنگے داموں پر فروخت کیا۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے ونڈوز سافٹ ویئر کی فروخت سے امریکہ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا رہا ہے، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اب مذکورہ شعبوں میں امریکہ کی اجارہ داری کو دیگر ممالک سے زبردست چیلنج مل رہا ہے۔ یہی نہیں، خود امریکی کمپنیاں آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے اپنا سرمایہ دوسرے ملکوں میں منتقل کر رہی ہیں اور بیرون ممالک لگائے گئے پلانٹ سے ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ میزبان ملکوں کے بینکوں میں ہی مزید سرمایہ کاری پر صرف ہو جاتا ہے۔ امریکی معیشت کو پیٹرو ڈالر سے بھی کافی فائدہ پہنچتا رہا ہے۔ 80 کے اشرے میں اوپیک ممالک نے تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کیا جس سے امریکی معیشت کو دھچکا پہنچا تھا، لیکن وہ سنبھل گیا کیونکہ امریکہ نے تیل خریدنے کے لیے جو رقم ادا کی وہ در حقیقت امریکہ سے باہر نہیں گئی۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک نے اپنی آمدنی کا بڑا حصہ امریکہ کے اندر ہی انویسٹ کر دیا۔ مثال کے طور پر اس وقت امریکی کمپنی ایکسان نے اضافی ادائیگی کے طور پر سعودی عرب کے شاہی خاندان کو تیل کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے عوض $1 کروڑ دیے، لیکن یہ رقم نیو یارک میں واقع ایکسان کے اکاؤنٹ سے نکل کر نیو یارک میں ہی سعودی عرب کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، اور سعودی عرب نے یہ رقم امریکہ میں ہی مینہٹن میں جائیدادیں خریدنے وغیرہ جیسے پروجیکٹوں پر صرف کر دی یا امریکی کمپنیوں کے شیئر خرید لیے۔ نتیجتاً رقم کی صرف مالکیت بدلی جبکہ یہ رقم نیو یارک میں ہی رہی۔ اس طرح امریکہ کساد بازاری سے محفوظ رہا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب جیسے ممالک اب طویل مدت تک امریکہ میں پیٹرو ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں کریں گے کیونکہ اب امریکہ کے حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں۔ امریکی معیشت پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا اس ملک میں لگائی گئی رقم کی قیمت آنے والے وقت میں کم ہو جائے گی۔ بنابراین یہ حکومتیں سرمایہ کاری کے لیے چین یا دوسرے ملکوں کا انتخاب کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ اس طرح امریکہ پیٹرو ڈالر کی جو رقم ادا کرے گا وہ اس ملک کے باہر منتقل ہوگی اور امریکہ کی کساد بازاری میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ خود امریکہ کے اندر اب اس موضوع پر بحث شروع ہو گئی ہے کہ امریکی عوام کو سطح زندگی میں گراوٹ لانی ہوگی اور محدود پیسوں میں زندگی گزارنے کا انداز سیکھنا ہوگا۔
جی ناظرین، امریکہ کا اقتصادی بحران اور حکومتی قرضوں کی سطح میں اضافہ آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر کو۔ کراچی سے اس بحث میں حصہ لیں گے پاکستان کے ایک اور ممتاز تجزیہ نگار نذیر لغاری، اور لندن اسٹوڈیو سے اس پروگرام میں شرکت کریں گے لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار شبیر رضوی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی ثاقب اکبر صاحب، امریکہ میں حکومت اور حزب اختلاف کی حالیہ جنگ کے جس کے باعث 16 دن تک حکومتی شٹ ڈاؤن جاری رہا، امریکہ کے اندر اور بیرونی سطح پر کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو داخلی طور پہ جو جنگ ہے
جی،
در حقیقت وہ مختلف گروپس جو مختلف کمپنیوں کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں
جی،
یہ ان کے درمیان ایک طرح کی جنگ ہے
جی۔
آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں کی انشورنس کمپنیاں جو اس سے پہلے کی ہیلتھ پالیسی سے एक मफादात हासिल कर रही थी, जिसको अब ओबामा केयर कहते हैं, अगर उसके ज़रिए से आप अब ये देखें कि दुनिया में, अगर यूरोप को आप ये देखें तो 2000 कुछ ऊपर डॉलर उनकी पर कैपिटा बनती है, जो हेल्थ पर इंश्योरेंस का ख़र्चा है, जबकि अमेरिका में इससे पहले 6000 तक ये जो है इसकी लिमिट चली गई थी। अब इसको बज़ाहिर तो बराक ओबामा की इंतज़ामिया ने इन जो हेल्थ के ऊपर उठने वाले इंश्योरेंस के अखराजात हैं उसमें ये एक कमी का मजदा सुनाया है, लेकिन एक तरफ तो ये कि इसका जो फैलाव है वो पूरी चूँकि अमरीकी कौम के ऊपर है, तो उनको ये तवक्को है कि ये जो इस ज़रिए से इंश्योरेंस की रकम जमा होगी वो रकम ज़्यादा होगी, इसलिए कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उससे बाहर रहने के लिए उन्होंने जो शरायत आयद की हैं वो भी ऐसी हैं कि आखिरकार बाकी लोग जो इस इंश्योरेंस को कबूल नहीं करेंगे वो भी आखिरकार मजबूर हो जाएंगे, इसलिए कि उनको बाहर रहना इस पूरी स्कीम से उसको महंगा पड़ेगा। एक तो मेरा ख्याल है इस पस मंज़र में देखा जाए, लेकिन इसका आउटलुक ये है कि हेल्थ के हवाले से इंश्योरेंस के जो अखराजात हैं वो बज़ाहिर अमरीकी आवाम को ये ज़ाहिर किया गया है कि वो उनको कम पे करना पड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ जो है वो जो दूसरी कंपनियां हैं, मैं ये समझता हूँ कि रिपब्लिकन्स का एक मसला तो ज़ाहिर है अपनी सियासतबाजी भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कि अपनी पार्टी के मफादात के लिए वो फ़कत ये काम कर रहे हों, मैं ये समझता हूँ कि वो कंपनियां जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बोल रही है दूसरे के मुकाबले में, कि अगर जिनके मफादात को नुकसान जो है वो पहुँचने का जो इस बिल के ज़रिए से उनको ये नज़र आ रहा था। मैं एक और इससे ये नतीजा ये निकालता हूँ कि अमरीकी जो इस वक्त सियासतदान है, या तो ख़ुद वो बहुत बड़े बड़े सरमायादार हैं, उनकी अपनी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और या फिर वो उनके नुमाइंदे हैं, जो इस मौजूदा जंग में भी इसको आप इसको उसी पस मंज़र में देखें, और ये जो इंतखाबात होते हैं उसके अंदर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन लोगों के ऊपर होती है कांग्रेस में और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और बाकी उसमें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरमायादारी निज़ाम का जो एक चेहरा है, यानी जो करप्शन की बुनियाद पर और नुमाइशी चेहरा जो है वो इस वक्त दुनिया में आश्कार से आश्कार तर होता चला जा रहा है। एक और मेरा ख्याल ये कि फ़कत इस को इन्होंने तो एक शोर शराबे की कैफियत बनाई है, लेकिन अमरीकी जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स जो हैं वो कई हवालों से पैदा हो गए हैं।
जी,
जो इससे पहले अपना जो अपना वॉल स्ट्रीट कब्ज़ा तहरीक चली थी उसमें भी जो बुनियादी मुतालबात सामने आए थे, आप देखें कि उसमें भी दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम को उन्होंने असल में बुनियाद बनाया था, बाकी चीज़ें तो उसकी अलग हैं। उनका ये कहना था कि 99% जो लोग हैं उनके सारे वसाइल जो हैं 1% लोग जो हैं उनके हाथ में है, जबकि ख़ुद गवर्नमेंट के अपने अदाद व शुमार जो है वो ये बताते हैं कि कुल अमेरिका की जो दौलत है वो उसका 80% 10% अफराद के कंट्रोल में है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगर मजीद इसकी तफसीलात में जाया जाए तो ये पता चलेगा कि वो लोग जिनके असल हाथ में सरमाया है वो वाकई वो जो अपना 1 या 2% ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में ज़्यादा दौलत अमेरिका की मौजूद है, दूसरी तरफ तकरीबन 20% ऐसे लोग हैं अमेरिका के अंदर जो ख़ुद गवर्नमेंट के अपने अदाद व शुमार और उनकी वेबसाइट्स पे जारी होने वाले अदाद व शुमार के मुताबिक या अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं या एम्प्लॉयमेंट का जो यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो है वो शिकार है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो बहुत सी कई रियासतों में अमेरिका के मरकज़ और फेडरेशन से अलहदगी की मूवमेंट चल रही है वो भी जो मरकज़ के या फेडरेशन के अलल्ले तलल्ले हैं और जिन चीज़ों पर फेडरेशन जो है वो खर्च कर रही है और टैक्सेस जो है वो लोगों को देने पड़ रहे हैं उससे ऐसी जो रियासतें हैं जो समझती हैं कि हमारे वसाइल जो हैं वो ज़्यादा हैं और हम एग्जिस्ट कर सकते हैं इस फेडरेशन की सरपरस्ती बगैर, मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों को सामने रख कर हम अमेरिका की जो मुस्तकबिल में जो बहरान माली जो है वो पैदा, अभी तो मैं समझता हूँ ये एक ज़रा सी तिलछिट है जो सामने आई है, और ये बात दुरुस्त है कि सबसे बड़ी यानी तजारत के हवाले से इकानमी इस वक्त अमेरिका से बड़ी भी चाइना की हो गई है, लेकिन अभी भी अमेरिका के पास यानी बहुत बड़ा सरमाया अभी अमेरिका के पास मौजूद है। अमेरिका के पास 135 बड़ी कंपनियां 500 में से अभी उनके मराकज वहां पे मौजूद हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो दौलत है इसलिए वहां पर जमा है कि लोग उसकी इकानमी या डॉलर पर एतमाद करते हैं। अभी आप ये देखें कि ये जरा सी जो वहां पे छोटा सा दो हफ्ते का जो मार्का हुआ है इसमें भी डॉलर के ऊपर जो है वो मनफी असरात पड़े हैं, और डॉलर की बैग के ऊपर सोना जो कि अमेरिका को मुहैया करना चाहिए था कानूनी तौर पर वो भी मौजूद नहीं है। लिहाजा एक बहुत ज्यादा नुमाइशी उसकी इकॉनमी है जो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि जू ही अगर ये तो यानी पर लगा के उड़ जाने वाली वाली कंपनियां हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि जब अमेरिका में किसी मरहले पे इक्तसादी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया तो सबसे पहले यूरो की मार्केट और यूरोप जो है वो इससे अमेरिका से दूरी इख्तियार करेगा। आप ये देख लें कि सीरिया के मसले पे कैसे वो बरतानिया जो हमेशा दुम छल्ला बना रहा है, जब उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे उनके मफादात जो हैं इक्तसादी हवाले से उनको कोई इसमें फ़ायदा उसमें नहीं है तो बरतानिया पीछे हट गया। हालांकि सबसे ज़्यादा बरतानिया को ऐसे सारे मार्कों में यानी अमेरिका को बरतानिया की सपोर्ट जो है वो रही है। इन सारे दुनिया के अंदर जो जिस दर्जे की बेदारी आ रही है और खुद अमेरिका के अंदर अवाम में जिस दर्जे का शऊर पैदा होता चला जा रहा है, ये सरमायादारी निज़ाम मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादें उखड़ती चली जा रही।
बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ बरसग़ीर के सीनियर तजिया निगार शब्बीर रिज़वी साहब मौजूद हैं। रिज़वी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आपको आपके नाजरीन को ईद मुबारक। पहले
ईद मुबारक हो आपको भी। रिज़वी साहब, अमेरिका में हुकूमती शटडाउन ख़त्म करने और हुकूमत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए जो अबूरी बजट बिल पास किया गया है, क्या उसको हुकूमत की फतह और हिज्ब इख्तलाफ रिपब्लिकन्स की शिकस्त करार दिया जा सकता है?
देखें, इस वक्त जो है मोमेंट्री तौर पर यानी कि एक दो महीने तक यानी कि 2013 के ख़त्म होने तक हो सकता है कि इसको हुकूमती फतेह कहा जा सकता है, मगर असल सिचुएशन जो है रिपब्लिकन पार्टी में एक ग्रुप कहलाया जाता है जो टी पार्टी ग्रुप है। मैं उन्हें कहता हूं कि वो रिपब्लिकन पार्टी के अलकायदा ग्रुप है। वो जो है खुद ब खुद जो है मुल्क की खुदकशी करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर जो है नुकसान किया जाए मुल्क का। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, किस प्लान के ऊपर वो चल रहे हैं। एक जो है यकीनी तौर पर जो दिखाई दे रहा है कि एक अमेरिका की सिचुएशन जो इकोनॉमिकली है बहुत ही वीक है। तकरीबन इस वक्त जो है ये डेट सीलिंग के इंक्रीज के होने के बाद जो है $17 ट्रिलियन का खर्जा यानी कि अमेरिका मकरूज है। उसमें से जो है $2 ट्रिलियन जो है चाइना को उन्होंने खर्ज लिया हुआ है। अगर चाइना चाहे इस वक्त तो अगर वो अमेरिकन डेट को ऑफलोड करना चाहे तो अमेरिका की इकोनॉमी और शैटर हो सकती है और डॉलर जो है वीक हो सकता है। उसकी दूसरी तरफ ये देखें कि चाइना की करेंसी जो है खुद इस वक्त जो है तकरीबन जो है बेस करेंसी बनती जा रही है। स्लोली लोग जो है स्पेशली फार ईस्ट में चाइनीज करेंसी से ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। और मेन इश्यू यह है कि अमेरिका की जो राइट विंग पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, जो पार्टी को सरमायेदारों की सपोर्ट है और जो पार्टी ये नहीं चाहती है कि वहाँ के गुरबा जो हैं, पूरा इश्यू जो है अगर देखा जाए तजिया किया जाए तो क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ केयर का रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। अमेरिका वाहिद मुल्क है जो डेवलप नेशंस में जहां पर 16% नेशनल जीडीपी का जो है हेल्थ केयर पर इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन में हो, यूरोप में हो, दूसरे यूरोपियन यूनियन के ममालिक जापान, वहाँ पर तकरीबन 8 से 10% जो है नेशनल इकोनॉमी का जो है हेल्थ केयर पर। ओबामा साहब और डेमोक्रेटिक पार्टी पिछले 20 बरस से ये चाह रहे हैं कि मुल्क के जो गरीब हैं, वो 50 मिलियन तकरीबन होते हैं, 50 मिलियन को कुछ हेल्थ सर्विस की फैसिलिटीज मिले। तो रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि जो गुरबा हैं उनको ना हेल्थ केयर मिले ना कोई फैसिलिटीज मिले, वो चाहते हैं कि खुद ब खुद मुल्क में इस तरह का टेररिज्म करें कि गरीब को मारा जाए, जैसे बैरूनी ममालिक में वो जाकर बॉम्ब गिराते हैं, यहां पर जो इकोनॉमिक टेररिज्म कर रहे हैं वो अपने मुल्क में, और मुल्क को यकीनी तौर पर इसका नुकसान पहुंचेगा। भले इस वक्त शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी की फतेह नजर आती है, मगर लॉन्ग टर्म में इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अक्सर एनालिस्ट का यही व्यू है कि ये जो है बड़ी तेजी से अमेरिका जो है खुदकशी की तरफ दौड़ा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार नज़ीर लगारी साहब तशरीफ रखते हैं। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी लगारी साहब, किसी भी जंग और लड़ाई में फतो शिकस्त का फैसला लड़ाई खत्म होने के बाद किया जा सकता है।
जी वालेकुम सलाम।
अमरीका में जो लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेट्स को की फतह हुई है, ओबामा इंतज़ामिया की फतह हुई है और रिपब्लिकन्स की शिकस्त हो गई है, तो क्या आप ये समझते हैं कि अमरीका में ओबामा के खिलाफ इंतहा पसंद रिपब्लिकन लीडरों की लड़ाई खत्म हो गई है?
ये जैसा मेरे फाजिल दोस्तों ने बताया है ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये बहुत एक थोड़ा सा ये रिलीफ है, मुद्दत है, बहुत मुख्तसर मुद्दत है, और इसके बाद ये मसला फिर पूरी शिद्दत से सर उठाएगा। और अमेरिका जिस बुहरान का शिकार हो रहा है और या होता जा रहा है, अब तेजी से और आगे बढ़ेगा। अमेरिका ने अपने अपने जो बहुत सी चीजें बढ़ा रखी हैं, अपने ऊपर डाल रखी हैं, जो आलमी जिम्मेदारियां अपने अपने सर ले रखी हैं, अब वो अमेरिका का सर दर्द बनने वाली हैं और बनती जा रही हैं। और इसका मुजाहरा 2008 में हुआ था और फिर 2010 में हुआ था और उसके बाद जो है ये अब आकर फिर एक एक बड़े बड़े चैलेंज के तौर पर आया है। और तवक्को की ये की जा रही थी कि पिछले साल होगा 2012 में एक बड़ा क्लैप्स होने वाला था जिसको इन्होंने अवॉइड किया है, और अब ये एक नए बुहरान का शिकार हुए हैं। और ये बहुत आर्जी तौर पर इसको हल करने की कोशिश की गई है, और जो कोशिशें की गई हैं वो महज बहुत ही आर्जी और बहुत ही इस सतह की हैं कि जिनके नतायज देरपा नहीं होंगे। देरपा नतायज के लिए इन्हें बहुत कुछ करना था। असल मसला खराबी सिस्टम की है। ये सिस्टम जो है, देखिए मालियाती ओलिगार्की के बारे में बहुत पहले कह दिया गया था कि लोग ये चाहेंगे कि जिनके जिनके जिनका सरमाया है वो उन पर सर्फ हो। सरमाया लोगों का है और कंपनियों का है, अकाउंट्स जो हैं वो करोड़ों लोगों के हैं, लेकिन उसका मालियाती कंट्रोल चंद लोगों के हाथों में है या चंद कंपनियों के हाथों में है, और मुनाफे की शरह जो है वो उसको सारे चंद मुनाफा कमाने वाले जो हैं वो समेट रहे हैं और समेट कर अमीर बनते जा रहे हैं। स्टेट गरीब हो रही है और लोग अमीर हो रहे हैं, और जो 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 चंद कंपनियां हैं या जो 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 सरमायादार इदारे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और एक तरफ मासेस गरीब हो रहे हैं और दूसरी तरफ स्टेट खुद गरीब हो रही है। और स्टेट का तो ये आलम है कि इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी मकरूज इकोनॉमी है और इनकी सारी मैशती कर्ज पर खड़ी हुई है और इनके गारंटीज पड़ी हुई है चीन के पास, जापान के पास, बर्तानिया के पास, इंडिया के पास और थाईलैंड के पास, और अपना जो उनकी अपनी एक एक छोटा सा वो है खिता है ताइवान, उनके पास पड़ी हुई है और जनूबी कोरिया के पास पड़ी हुई है, और इनने गारंटीज दे रखी हैं और वहां से इनने कर्जे लिए हुए हैं और बड़े पैमाने पर कर्जे लिए हुए हैं, और इनके जो डोमेस्टिक कर्जे हैं वो इनकी टोटल जीडीपी से ज्यादा हैं, और इनके बैरूनी कर्जे भी बहुत ज्यादा हैं, जो इनकी इकोनॉमी का पता चलता है कि किस तरह से शैक इकोनॉमी है और न चलने वाली इकोनॉमी है। अब इसमें क्या इस्लाहत हो सकती हैं? एक इस्लाहत इन्होंने पहले की थी जब मालियाती बुहरान आया था, और वो इस्लाहत यही थी कि जनाब बैंकों को इन्होंने इन्होंने जो है वो कैश पंप किया, उसको उनको डॉलर दिए, उनको पैकेजेस दिए, और पैकेजेस के जरिए बैंकों की वो जो है बहाल की गई। वो ने तो डिफॉल्ट करने वाले थे, बैंक डिफॉल्ट करने वाले थे, इस बार अमेरिका खुद डिफॉल्ट करने वाला था, स्टेट के तौर पर डिफॉल्ट करने वाला था। तो अमेरिका जो है एक एक स्टेट के तौर पर, एक रियासत के तौर पर बहुत ही गरीब रियासत बनता जा रहा है, और उस पर इतने ज्यादा बोझ रखे हुए हैं आलमी, जो उसने खुद अपने सर पर लिए हुए हैं, और बाजार में खुद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बादशाह बनकर वो दुनिया के अंदर अपना एक राज चलाना चाहता है और एक सिस्टम चलाना चाहता है अमेरिका। और साथ में ये भी है कि जनाब वो आलमी इकोनॉमी को अपना कंट्रोल करना चाहता है। दुनिया भर के वसायल अगर ना हो, अगर दुनिया भर से जो वसायल की लूटमार होती है और वो अमेरिका पहुंचते हैं, और अगर वो ना पहुंचे और अमेरिका जो है वो बैलेंस अपने हाथ में ना रखे, या डॉलर के जरिए जो दुनिया के अंदर हुक्मरानी है अगर ये खत्म हो जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी तो ढह जाएगी, क्लैप्स कर जाएगी। और बिलमूम यही सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि एक इस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सहारे दिए जा सकते हैं। अमरीका को आपने आलमी एजेंडे को बहुत महदूद करना पड़ेगा, इसे खत्म करना पड़ेगा। अब वो सूरत हाल नहीं है कि वो अपने आलमी एजेंडे को भी आगे चढ़ाए और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जंगों की इकोनॉमी अमेरिकन स्टेट को फायदा नहीं दे रही है, अमरीकी सरमायादार इससे फायदा उठा रहा है। अमरीका जो जंगी आलात बना रहा है या जंग से जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव जो अशिया बना रहा है, जो हथियार बना रहा है, उनकी कंपनियों का फायदा हो रहा है। अमरीका बतौर रियासत तो गरीब होता जा रहा है और दो हिसाब से गरीब हो रहा है अमरीका। एक लिहाज से मालियाती तौर पर गरीब हो रहा है और दूसरी तरफ यह है कि दुनिया में इस सुपर पावर का एहतराम नहीं रहा है, इसकी इज्जत नहीं रही है। और दुनिया के लोग अपने हर आदमी जो दुनिया में जो गरीब है वो ये समझता है कि हमारी गुर्बत की सबब अमेरिका है और अमेरिका की वजह से हम गरीब हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिकन को ये सोचना होगा कि वो इस सिस्टम के साथ और इस आलमी एजेंडे के साथ वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं कि कहीं भी इश्यू हो वो पहुंच जाए और कहें कि जनाब हमारा पहले मसला कीजिए, और वो कहें कि जनाब यहां हमारे मफादात को खतरा है, हम जाते हैं सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में हमारे मफादात को खतरा है, हम जनूबी एशिया जा रहे हैं, जनूबी एशिया में हमारे मफादात को खतरा है, हम मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हमारे मफादात को खतरा है, और हम यूरोप जा रहे हैं, यूरोप में हमारे मफादात को खतरा है। तो ये हथियार लेकर और अपने औजार लेकर और अपने रॉकेट्स लेकर और अपने मिसाइल लेकर दुनिया में कहां कहां फिरेंगे और कहां कहां किस किस मोहम खतरात के पीछे भागेंगे। इन्होंने कोल्ड वार लड़ी और कोल्ड वार में पूरी की पूरी एक तवील 50 साल कोल्ड वार में दुनिया को भी मुब्तला रखा, पूरी दुनिया को एक अजाब में रखा गया और दुनिया को तरक्की नहीं करने दी गई। चंद तरक्की के गोशे पैदा किए गए, चंद ऐसे ऐसे ममालिक थे जिनको तरक्की की झलक दिखाई गई ताकि पूरी दुनिया ललचाती नजरों से देखे, हम देखें और कहें कि जनाब क्या हो गया, ये हम तो तरक्की नहीं कर पाए। जनूबी कोरिया तरक्की कर गया, हम तरक्की नहीं कर पाए। सिंगापुर तरक्की कर गया, हम तरक्की नहीं कर पाए। ताइवान तरक्की कर गया, ओहो। तो हम अपने आप को देखें कि अच्छा हमारे लिए भी इम्कान है कि हम अमेरिका की पॉलिसियों को फॉलो करें तो शायद हमारे लिए जो है तरक्की का इम्कान हो। ऐसा नहीं है, अमेरिका तय करके कुछ इकोनॉमीज को उसने बूस्ट करने में मदद दी और कुछ इकोनॉमीज को क्लैप्स करने में। अब मार्शल प्लान दिया गया था जो को अपना पहली दूसरी जंग अजीम के बाद, उस मार्शल प्लान के बाद जो इकोनॉमीज उठ सकती थी वो उठाई, और उसके बाद दुनिया के अंदर किसी मुल्क को सीरियस इन्होंने कोशिश नहीं की किसी की इकोनॉमी बहाल करने के लिए। जब भी ये मदद को आए हैं, उस जिसकी मदद करने के लिए आए हैं उसको सत्यानाश हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ सका है। और अब ये खुद एक ऐसे बहरान में पहुंच चुके हैं जहां से इनके आगे तारीकी ही तारीकी है, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ये जो आप अभी जो बिल पास किया गया है, जो अभी रिलीफ आई है, बहुत आरजी है और इसके जो नतायज हैं वो देर पा नहीं होंगे। और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए जो क्राइसिस मौजूद है वो अभी और मौजूद है और रहेगा, और इस और ये क्राइसिस ज्यादा संगीन होगा ता वक्ते के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये तय नहीं कर लेती कि उसे आलमी एजेंडे में अपना किरदार महदूद से महदूद पर करना है। अगर वो महदूद अपना किरदार नहीं करते हैं और अपना फैलाते जाते हैं एजेंडा, आलमी एजेंडा, और ये भी यहां भी हमने तनाजा किया है, इसको हल करना है, फुला मसला हमने हल करना है, सीरिया का मसला हमने हल करना है, और दुनिया के मसाइल हैं जी हमने क्या किया, ये जो नॉर्थ अफ्रीका में आकर इन्होंने आकर जमहूरियत बहाल कराने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला है, अब वहां पर क्या दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, वही सूरत हाल है। और मिस्र में फौज आकर बैठ गई है और वो जनाब अब उसकी भी पुष्ट बनाई, और एक तरफ उसको लोगों को कहना कि नहीं हम इससे नाराज हैं और उसकी तरफ से उसकी इमदाद भी जारी रखी हुई है। तो ऐसी दो अमली की पॉलिसी में अमेरिकन अवाम गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकन अवाम ने अपनी तारीखी जिद्दोजहद जो कुछ हासिल किया था वो उसको जाय होता देख रहे हैं, और वो तमाम कामयाबियां जो इन्हें मिली थी वो कामयाबियां जो है अब नाकामी में बदलती जा रही है और सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब। जी डॉक्टर साकिब अकबर साहब, जनाब अमेरिका के जो टी पार्टी ग्रुप है उसके लीडरों ने ऐलान किया है कि अगरचे हालिया लड़ाई में उन्हें पसपाई अख्तियार करना पड़ी है, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और बहुत जल्द वो नई स्ट्रेटेजी के साथ वापस आएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी, हाँ जी, वो ऐसा ही है कि उनको अमेरिकन गवर्नमेंट को फिर एक दफ़ा
जी
उनको फेस करना पड़ना है,
जी
यानी 3 माह बाद, और
जी
रिपब्लिकन्स के का वोट उनको दरकार होगा। ये जो अभी यूँ समझे कि उन्होंने बेल आउट किया है
जी
ओबामा इंतज़ामिया को, तो वो फिर नई स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो ये चाहेंगे कि जिनके मफादात के लिए उन्होंने पहले एक मार्का लड़ने की कोशिश की है,
जी
उन्हीं ग्रुप्स और कंपनीज की नुमाइंदगी करते हुए और उनके साथ मुशावरत के बाद वो फिर नए सिरे से सामने आए। क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर इस अगर वो खड़े रहते तो उनका ये ख्याल था कि अवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो
जी
मुतासर हो रही थी, और जाहिर है कि सियासतदानों को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये भी देखना होता है कि अवाम के सामने उनका चेहरा जो है वो ठीक रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये नई हिकमत अमली और नए प्लान्स के साथ, जैसा कि उन्होंने खुद भी इसको टी पार्टी के लीडर्स ने इसको अनाउंस किया है और कांग्रेस के सरबराह ने भी इस पर बात की है, तो मेरा ख्याल है कि एक नए मार्के के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जहनी तौर पर कि वो अमरीका के अंदर उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया एक दफ़ा फिर इससे निकल जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिकन इकॉनमी जो है वो फिर बहाल हो जाएगी।
जी
नज़ीर अपना लगारी साहब ने जो चीज़ें पेश की हैं, मेरा ख्याल है उस पर चीज़ों को ज़्यादा वाज़े और गहरे अंदाज से उन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जी जो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका ने अभी जो हालिया जंगें लड़ी हैं,
जी
आपने जो इम्पोज़ की हैं इराक के हवाले से या अफ़गानिस्तान के हवाले से या भी बाकी मिडल ईस्ट में जो
जी
उन्होंने इकदाम किए हैं, तो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री है, उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा खुद अपने ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, बहुत ज़्यादा असला जो है ना उन्होंने बेचा है। हैरत की बात यह है कि जब ये कंपनियां बहुत ज़्यादा असला बेच रही थी और रिकॉर्ड आमदनी हो रही थी, उसी पीरियड में ये 2008 का क्राइसिस भी अमेरिका में आया है, 2010 का भी क्राइसिस आया है और अभी ये भी क्राइसिस आया है,
जी
और जो बैंक्स जो के ज़रिया हैं इन इन सारे इस सरमायादारी निज़ाम और आवाम को लूटने का, अजीब बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो सहारा लिया है अंदरूनी तौर पर मज़ीद कर्ज़े हासिल करने के लिए जो इजाज़त ली है, वो पैसा फिर आवाम पे खर्च करने या उनके हालात को बेहतर बनाने की बजाय उन्हीं बैंकों पे ऊपर उन्होंने खर्च किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त
जी
जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अगर हमने 20वीं सदी में जवाल देखा है
जी
बरतानिया का, जिसके बारे में कहा जाता था कि बरतानिया का सूरज जो है वो ग़ुरूब नहीं होता, अब बरतानिया सिमट के एक छोटा सा जो है वो मुल्क रह गया है, इसी तरह से सोवियत यूनियन जो अमेरिका के मुकाबले में उसकी टक्कर की एक गवर्नमेंट थी, ये
जी
एक ताकत थी, उसको भी हमने टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा है। अफसोस की बात यह है कि अमेरिका ने सबक नहीं सीखा है।
जी
अगर रशिया सोवियत यूनियन अपने आप को यूं नहीं फैलाता और अपनी लाइबिलिटीज़ में इजाफा नहीं करता, तो सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े होने और उसको एक बड़ी ताकत से नीचे आने का मैं समझता हूँ कि ये दिन ना देखना पड़ता। अभी इस वक्त ज़रूरत इस बात की है। अब आप ये देखें कि जब अमेरिका एक अकेला एक सुपर ताकत के तौर पर सामने आया तो उसने दुनिया में हर जगह
जी
पे ऐसा खौफ पैदा किया और ऐसे हालात पैदा किए कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा इस खौफ की फ़ज़ा को पैदा करके अपनी इकॉनमी को या अपनी कंपनीज को सहारा दिया और
जी
पैसा जमा किया। अब सूरत हाल ये हो गई, ये एक छोटा सी मिसाल दुनिया के सामने आ गई
जी
कि अमेरिका के मुकाबले में रशिया खड़ा हो गया, या छोटी कौमों ने भी कहा कि हम अपने सब कुछ कुर्बान करेंगे लेकिन ये अगर हम पे हमला किया गया तो हम तालाबीब में इसका जवाब
जी
देंगे, उधर रशिया भी सामने आ गया। तो अब अमेरिका जो है और एक तरफ चाइना की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है,
जी
लिहाजा अमेरिका की जो वो थी ना कि हम चुनान दीगरी नीस्त,
जी
यानी अना वला गैरी वाली बात, अब वो हो गई है ख़त्म। तो अब वो दौर गया है लद। अब अमेरिका को जाहिर है कि अपने पर पुर्जे दुनिया में समेटने पड़ेंगे, बहुत बड़ी उसकी यानी मशीनरी जो है दुनिया में फैली हुई है और उसने अपने सर पे बहुत बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज ले ली हैं, इसको करना पड़ेगा कर्टेल। लेकिन जो ही कर्टेल करने की तरफ वो जाएगा, इधर से वो समेटेगा और उधर से दाखिली तौर पर डॉलर उड़ेगा, कंपनियां अपने मरकज वहां छोड़ जाएंगी और अपना इस वक्त 32 रियासतें 52 में से पिटीशन दाखिल कर चुकी हैं, अमेरिका से अलैदगी के मुतालबे जोर पकड़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ना फकत यानी लोग देखेंगे कि ये तेज रफ्तारी के साथ जो है अमेरिका जो है वो पीछे की तरफ आएगा, और जो चीज बरतानिया को सिमटते सिमटते जितनी मुद्दत लगी है, हमें खतरा यह है, अगरचे उसके असरात बाकी दुनिया पर भी देखना पड़ेगा कि क्या मुरतब होते हैं। यूरोपीय यूनियन जो है इस वक्त 24% जो है वो इस वक्त तजारत जो है दुनिया की इकानमी उसके हाथ में है। इधर चाइना भी जो है वो भी सामने आ रहा है। अब दुनिया में यानी लोग टिल्ट कर रहे हैं डॉलर से, अब आ रहे हैं यूरो की तरफ। आप ये देखें पिछले गुज़श्ता चंद सालों के अंदर यूरो की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ी है और चाइना की एक जो है युआन उसकी तरफ भी इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ी है, और डॉलर की हैसियत जो है वो कम होती चली जा रही है।
लिहाजा
अगर आइंदा आप ये देखें कि अगर ये 3 माह बाद एक नया तमाशा होता भी है और उसमें से अमरीका निकल भी जाता है बज़ाहिर, तब भी अमेरिका के लिए बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स हैं। वहां उनके दिमागों को मिलकर बैठना चाहिए और दुनिया पर भी अपने बुरे असरात जो हैं उसको कम करने की कोशिश करें और खुद आवाम का एतमाद और रियासतों का एतमाद बहाल करें, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाकी रहना है तो।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजवी साहब। अमरीका में हुकूमती कर्जों की सतह बढ़ के 70 मिलियन डॉलर हो चुकी है। ओबामा साहब जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो कर्जों की सतह 10 ट्रिलियन 627 मिलियन डॉलर थी। 5-6 साल के अरसे में इस सतह में इतना इजाफा, असबाब क्या हैं
इसके? असबाब एक तो जो है इकोनॉमिक और बैंकिंग कलैप्स, जैसे हमारे दो ब्रदरान फरमा रहे थे कि बैंक्स को बेल आउट करने की बिना पर ये ट्रिलियन डॉलर्स और जो है 6-7 ट्रिलियन डॉलर्स पिछले 6-7 साल में इंक्रीज हुए। दूसरा ये है कि जंगी मामलात, चाहे वो इराक में जंग हो या अफगानिस्तान में या लीबिया के ऊपर बॉम्बिंग हो, जब एक बॉम्ब गिराया जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। तो हर लिहाज से अमेरिका जो है फालतू पैसा इस्तेमाल कर रहा है और उसकी बिना पर जो है हुकूमती और पब्लिक का नुकसान हो रहा है। एक जो खसूसी बात है, जो अहम बात हमें देखनी चाहिए, देखिए अमेरिका पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो एक जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक टेररिस्ट की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो हथियार इस्तेमाल करते हैं गरीब मुल्कों पर, छोटे मुल्कों पर, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका में पहले किया करते थे। दूसरी तरफ से जो है इक्तज़ादी तौर पर इकोनॉमिक टेररिज्म करते रहते हैं, वो डॉलर को अपना इस्तेमाल करते हैं एज अ बेस करेंसी और उसकी बिना पर जो है मुल्कों को ब्लैकमेल करते हैं, मुल्कों की जो है इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। इसका सिचुएशन जो है वापस अमेरिका पर खुद आ रही है, क्योंकि जैसे ब्रदर ने फरमाया कि अमेरिका के खुद स्टेट्स चाह रहे हैं कि वो अलग हो जाएं। मेन इश्यू जो इस वक्त है, क्योंकि अमेरिका में जो मूवमेंट शुरू हुई थी 2 साल पहले 99% और 1% वाली, यकीनी तौर पर जो सरमाएदार हैं और जो रईस कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अमेरिका से ऑपरेट करती हैं, उन्होंने एक अपने फायदे के लिए हर चीज बना रखी है, उसकी बिना पर जो है पब्लिक का नुकसान होता जाता है और हुकूमत को जो है मखरूज होना पड़ता है। हुकूमत को जो है यानी कि स्कूल्स को चलाने के लिए, हेल्थ केयर को चलाने के लिए, दूसरी जो अहम चीजें पब्लिक के बेनिफिट के लिए होती हैं उसके लिए और कर्ज लेना पड़ता है, और वो कर्ज जो है डोमेस्टिक कर्ज होता है और एक बेरूनी कर्ज होता है, जिसमें जो है अमेरिका बॉन्ड्स बनाती है, वो दूसरे ममालिक को बेचती है और वो बॉन्ड से जो है खुद यानी कि हुकूमती तौर पर जो है मकरूज होती जाती है। इसकी बिना पर जो है ये जो इस वक्त जो जंग चल रही है आपस में कांग्रेस की, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की, ये जंग जो है खत्म होने वाली नहीं है, ये जंग जो है कंटिन्यू करेगी। इसमें हो सकता है जैसे महावेरा है कि बैटल इस वक्त रुकी हुई है मगर जंग जारी है। वो जंग का जो है असल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक यानी कि खुदकशी की तौर पर जो है अमेरिका खुद तेजी से दौड़ रहा है, और ये यानी कि बड़ी जल्दी दुनिया भर के आवाम को और खुद अमेरिका के आवाम को पता चल जाएगा कि जो गलतियां और जो गुनाह इन्होंने दुनिया पर किए हैं वो गुनाह इनको जो है खुद आकर जो है नुकसान पहुंचाने
बहुत,
वाले हैं।
बहुत शुक्रिया,
हमें ये देखना पड़ेगा
जी। शुक्रिया जनाब रिजवी साहब। लगारी साहब, अमरीका को दुनिया की सबसे बड़ी इकतसादी ताकत कहा जाता है, लेकिन उसका सारा दारो मदार कर्जों पर है, और कर्जों का आलम यह है कि रोज़ाना के हिसाब से कर्जों की सतह में इजाफा हो रहा है। क्या इसके बाद भी उसको दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और सबसे बड़ी इकतसादी ताकत कहना सही है? 2 मिनट का टाइम, 2.5 मिनट का वक्त है हमारे पास।
ये तो चंद दिनों की बात है
जी।
जिस रफ्तार से चीन जो है एक बड़ी माली मालियाती और एक बड़ी सनती और एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभर रहा है, और सिर्फ चीन ही नहीं उभर रहा है, और भी ममालिक उभर रहे हैं, और वो इसकी ये पोजीशन बरकरार नहीं रहने देंगे। असल मसला ये है कि अमेरिकन सोसाइटी को, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को, अमेरिकी दानिश्वरों को, अमेरिकी थिंक टैंक्स को, अमेरिकी अवाम को, लोगों को सोचना है कि उनका मुस्तकबिल क्या है। देखें, बर्तानिया का इस तरह से उसका सूरज गुरूब हो जाना जो है वो बिल्कुल अलग सी बात थी। बर्तानिया जो खुद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, और अब तो स्कॉटलैंड भी जो है वो अलग होने की बातें कर रहा है, और शायद इस अगले साल जो है उसका भी रेफरेंडम होना है कि वो फैसला करेगा कि वो इंग्लैंड के साथ रहता है या नहीं रहता है। लेकिन वो ये जुग्राफियाई तौर पर एक दूसरे के साथ मरबूत है अमेरिका, और अमेरिका की तमाम रियासतें अगर आपस के बाहमी तनाजात में उलझी तो ये तबाहकुन होगा अमेरिका के लिए ही नहीं। देखें, उस वक्त दूसरी सूरत हाल थी, जब अमरीकी जब बरतानवी सुपर पावर का जिवाल हो रहा था तो बिल्कुल सूरत हाल दूसरी थी। उस वक्त दुनिया में इतने एटम बम नहीं रखे हुए थे, उस वक्त दुनिया में इतने हाइड्रोजन बम नहीं रखे हुए थे, उस वक्त तो ये बताया ही नहीं गया था, बल्कि ये आपस में सलाह मशवरे कर रहे थे चर्चिल और रोजवेल्ट के, यार इसको स्टालिन को बताएं कि हमारे पास कोई बड़ा हथियार भी है और हम हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी उस वक्त तो ये पता ही नहीं था, अब तो सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है ऐसे हथियार रखे हुए हैं जो इतने तबाह कौन है कि इस दुनिया जमीन को कई दफा तबाह किया जा सकता है। इनके होते हुए अमेरिका का क्लैप्स होना या अमेरिका का किसी सूरत में जो डिसइंटीग्रेट होना, वो एक आलमी तबाही का सबब भी बनेगा। अमेरिकन को खुद अकल से काम लेना है, इन तमाम दानिश्वरों को, अमेरिकन सोसाइटी को, अमेरिकी अवाम को, अमेरिकी सियासी जमातों को। सियासी जमातें महज मल्टीनेशनल कंपनियों की इंतजामी एजेंसियां ना बने, वो हुकूमतें बने। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही बनी हुई है कि जनाब वो अपने सरमायादारों को और मल्टीनेशनल कंपनियों को खुश करने में लगी
बहुत
हुई है।
बहुत
का
जनाब
सत्यानाश हो रहा है,
बहुत
दुनिया
बहुत शुक्रिया,
सत्यानाश हो रहा है, इस तरफ सोचा ही नहीं जा रहा है।
और बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल, अमरीकी मईशत और अमरीकी इकतसाद को बचाना ये अमरीकी सियासतदानों का काम है कि वो इस बारे में सोचें, लेकिन हमारे सोचने की बात यह है कि अमरीका का इकतसादी निज़ाम इतना कमज़ोर और उसका माशी सिस्टम ऐसा है कि किसी भी वक्त हुकूमती शटडाउन का बहरान पैदा हो सकता है, और ये बहरान तूल पकड़ के हुकूमत के रियासत के डिफ़ॉल्ट कर जाने पर मुंतज हो सकता है। तो फिर ऐसे निज़ाम और ऐसे सिस्टम से अपनी मईशत को वाबस्ता रखना ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये सोचना मुल्कों के सियासतदानों और हुकूमतों का काम है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@rateofsahartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।